गंगा जी का स्पर्श करने के बाद पावन हुआ जाता है, परंतु आप तो दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। भगवान श्री हरि के प्रति यदि कोई अपराध हो जाए तो हरि से अभिन्न हरिनाम उद्धार कर देता है, परंतु हे वैष्णव ठाकुर, यदि आपके प्रति अपराध हो जाए तो उसका और कोई परित्राण नहीं है। हे वैष्णव ठाकुर, आपके हृदय में हमेशा गोविंद जी का अवस्थान रहता है। साक्षात गोविंद जी भी कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणों की धूलि की आशा करता हूँ, आप अपना जन जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलिकल्मषनाशाय जहनवापतये नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमो नमः। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धामं वृंदावनम रम्यत काजित उपासना ब्रजवधुवर्गे नया कल्पिता। श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत्रादरो न परः। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद की जय। सब लोग बोलिएगा प्रेम से जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत् कृपातम अहं वंदे परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का सुबह की भागवत कक्षा में स्वागत है, आपके घर वृंदावन धाम में। मैं भी अपना घर नहीं बना पाया, मेरा भी घर यही है लेकिन भटक के दिल्ली चला गया। तो मेरा सौभाग्य है कि आज इतने सारे आचार्यों के गुणानुवाद का अवसर मिल रहा है, तो उनके गुण तो भरे हुए हैं, गुणों की खान है। मैं अपने को शुद्ध करूंगा, उनके बारे में एक अंश मात्र बोल करके, क्योंकि वैष्णव तो गुणों की खान है। जिस प्रकार भगवान की अनंत लीलाएं हैं, उसी प्रकार वैष्णव का भी भगवान की सेवा के प्रति अनंत अनंत जो है उनकी अपनी भावनाएं हैं, तो वो भी जो है भावनाएं अनंत हो जाती हैं भगवान की सेवा के लिए। तो आज बहुत पवित्र दिन है, बसंत पंचमी। तो ऋतुएं, छह ऋतुएं होती हैं आप जानते हैं, उनमें से बसंत ऋतु जो है सभी ऋतुओं की राजा है। बसंत पंचमी सभी ऋतुओं की राजा। तो बसंत आज से, वैसे बसंत पंचमी वैसे तो 35 या 40 दिन के बाद आती है, लेकिन जैसे राजा जब आता है तो उसके दूत आते हैं, राजा आ रहे हैं उससे पहले दूत आते हैं, उसी प्रकार बसंत पंचमी है मतलब आज से समझ लीजिए शुरू है या प्रारंभ है या एक महीने बाद आएगी, इसको बसंत ऋतु बोलते हैं, यानी कि चैत और बैसाख। और जैसे ग्रीष्म ऋतु आप देखेंगे चैत बैसाख के बाद क्या था, ज्येष्ठ आषाढ़, ये किसी को पता ही नहीं आजकल, क्योंकि सबको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यही पता है। तो हिंदी में इस प्रकार से जो है ज्येष्ठ आषाढ़, और वर्षा ऋतु, तीसरी वर्षा ऋतु है श्रावण भादो, फिर आगे शरद ऋतु क्वार कार्तिक, शरद ऋतु बोलते ना शरद, शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला की थी तो क्वार कार्तिक, कार्तिक में आता है। और फिर हेमंत ऋतु आती है, असौज क्वार कार्तिक के बाद क्या आता है, मंगसिर और पौष माघ, उसको मार्गशीर्ष भी बोलते हैं वैसे, और अलग अलग प्रांत में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हेमंत ऋतु जो है उसमें आती है माघ और पौष, उसके बाद फाल्गुन, तो फिर शिशिर ऋतु आती है शिशिर। तो ये छह ऋतु हैं, तो उन ऋतुओं का राजा जो है बसंत ऋतु है। इसीलिए जब ब्रज में आज से समझ लीजिए होली के फाग गाए जाएंगे, आज से शुरू हो जाती है ब्रज में होली, ब्रज में ये नहीं कि मार्च के बाद शुरू होती है, आज से शुरू होती है। और आप खेतों में देखेंगे चहु दिशाओं में सरसों खिली रहती है पीले पीले, तो इसलिए आज पीला वस्त्र पहनाने का, पीला वस्त्र पहनने का बड़ा वो है महत्व है, पीला पीला। और ठाकुर जी तो पीले कलर के, उनको फेवरेट कलर है उनका पीला, कृष्ण का फेवरेट कलर है ना, तो आज सभी पीले पीले हुए, आज हमारे ठाकुर पीलम पीला 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 बहुत सुंदर अद्भुत। आज राधा श्याम सुंदर मोटे लग रहे हैं ज्यादा, मुख से वैसे तो है ही है, मुख से और भर गए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, यहाँ जितने भक्त हैं सबने अपनी आंखों से दर्शन किए हैं, अपनी अपनी भावना से दर्शन किए हैं, किसी को कुछ लग रहे होंगे, किसी को कुछ लग रहे होंगे, मेरे को आज उनको एकदम बिल्कुल बहुत एकदम मोटे मोटे भरे भरे, मंगल आरती में थोड़ा सा कम थे, अभी भक्तों ने सजा धजा करके खिला पिला करके एकदम बिल्कुल भगवान जो है बोलते हैं ठीक है राजा हो गए हम बहुत आनंद से भर गए। जब कोई आनंद में होता है ना तो उसकी गाल वाल सब खुल जाती है सही में, तो जब आप भी देखिएगा सब सारे सारे खाने जो है एकदम प्रसन्न चित हो जाते हैं। तो लिंक है सरस्वती पूजा और विष्णु प्रिया जी से, तो इसलिए मैं विष्णु श्रीमती विष्णु प्रिया देवी जी के बारे में वर्णन करेंगे। घड़ी सामने है जितना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे आचार्यों के बारे में वर्णन है तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश करेंगे। गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है, श्री सनातन मिश्रो अयम पुरा सत्राजितो नृपः विष्णु प्रिया जगन्माता यत्र कन्या भूस्वरूपिणी। तो पिछले समय में जो सत्राजित थे, राजा सत्राजित थे, वही कौन बने हैं, सनातन मिश्र बने हैं। तो सनातन मिश्र जी की कौन है, कन्या है, कन्या बन के आई है कौन, क्योंकि सत्राजित की कन्या कौन थी, सत्यभामा जी, तो सत्यभामा जी ही जो है श्रीमती विष्णु प्रिया जी के रूप में आई है। और सत्यभामा जी बड़ा मान करती हैं, कृष्ण जी को काफी मतलब नचा करके रखा था उन्होंने बहुत अच्छे से, ये गुण जो है अच्छा सा आता था उनको, शणे तुष्टा शणे रुष्टा कृष्ण को स्वर्ग जाकर के पारिजात भी लाना पड़ा था नारद जी के हाथ में, नारद जी इतना सुंदर पुष्प लाए थे, उसको देख के उन्होंने बोला मुझे ऐसा ही चाहिए, तो भगवान ने बोला मैं पेड़ ही लाता हूं। इंद्र मना करने लगे, दूसरी भगवान की संपत्ति और इंद्र मना कर रहे हैं, तो भगवान ने बोला ठीक है अपनी पत्नी के लिए तो फिर धर्म पत्नी के लिए तो फिर युद्ध भी करना पड़ेगा। फिर इंद्र को परास्त किए और उसको लाए, और भगवान ने वैसे सभी रानियों के महलों के बाहर, क्योंकि अब जिसके पास में इतनी रानियां हैं उसको तो सबको संतोष रखना, जो एक ही व्यक्ति है केवल वो अपने आप को संतोष रखेगा तो वो उस व्यक्ति का भाव नहीं समझ सकता है कि वो सबको कैसे खुश रख रहा है, उनका वो जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से सत्यभामा जी जो हैं कौन बनी, विष्णुप्रिया जी बनी। और जैसे भगवान की तीन प्रकार की जो हैं शक्तियां बता रखा है विष्णु तत्व, तीन शक्तियां तो कौन कौन सी शक्तियां हैं, तीन शक्तियां माया शक्ति, जीव शक्ति और अंतरंगा शक्ति, ठीक है कि नहीं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। तटस्था को ही जीव आत्माएं बोलते हैं सभी, और माया शक्ति मतलब बहिरंगा, बहिर एक्सटर्नल पोटेंसी, बहिरंगा यानी कि दुर्गा जी। तो तीन जो शक्तियां हैं श्री, भू और लीला। तो श्री शक्ति का प्रतिनिधित्व लक्ष्मी जी करती हैं, और जो भू शक्ति है उसका प्रतिनिधित्व कौन करती हैं, विष्णु प्रिया जी करती हैं। यानी कि भू का मतलब यहां पर यह है कि भगवान की भक्त शक्ति, भक्ति की जो शक्ति है, अगर हमें भक्ति चाहिए तो विष्णु प्रिया जी को हमने क्या करना है, प्रार्थना करना है, विष्णु प्रिया जी के जीवन के बारे में सुनना है और उनसे प्रार्थना करना है, उनसे शक्ति मांगनी है कि मैं जो है भगवान की भक्ति को कर पाऊं, संभाल पाऊं। क्योंकि जो भक्ति लता बीज आप सभी भक्तों को मिला है, ब्रज धाम में रहने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि ये साधारण नहीं है, अनेक जन्मों का, अनेक जन्मों की इच्छाएं, अनेक जन्मों का भक्तों का सेवा, अनेक जन्मों का श्रवण कीर्तन, अनेक जन्मों का थोड़ा थोड़ा जो इकट्ठा करके, तो उसके बाद जो है ये फल मिलता है वृंदावन में रहने का। फिर वृंदावन में रहने के बाद फिर जब हम गुरु गौरांग और वैष्णव और धाम, धामवासी हरिनाम प्रसाद जब इनकी सेवा करते हैं, तब फिर हमें कृष्ण जो है अपना प्रेम जो है गिफ्ट में देते हैं, उसके फलस्वरूप फिर प्रेम प्रकाशित होता है। तो प्रेम अगर कोई हमारे हृदय में प्रकाशित कर सकता है तो वो है विष्णु प्रिया जी, गौर नारायण जी की शक्ति जो है, भक्ति की शक्ति। तो आगे बताया है, फिर है लीला शक्ति यानी कि श्रीधाम, जहां भगवान अपना लीलाएं करते हैं, श्रीधाम वृंदावन है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ब्रज धाम में जो है सारे धाम जो है आ जाते हैं, सारे धाम वृंदावन में जो है क्या होते हैं, वो हाजिरी देते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी भी और नवदीप भी और वृंदावन भी ये जो है एक ही हैं, अलग नहीं है। जैसे जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, वो एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं वृंदावन में नहीं रहना चाहता। आप लोग बोलेंगे हमने तो सुना नहीं कभी भी, मैं जगन्नाथपुरी में नहीं रहना चाहता, मैं नवदीप में भी नहीं रहना चाहता। तो आधे लोगों के मन सिकुड़ गए होंगे, क्या कह दिया बताओ। बोलते हैं मैं कुरुक्षेत्र में रहना चाहूंगा, वो भाव में बोल रहे हैं, रहना क्यों नहीं चाहेंगे, लेकिन वो उस मूड में बोल रहे हैं क्योंकि राधा रानी कुरुक्षेत्र में सबको सेवा देती हैं और यहां से कृष्ण को लाने के लिए कुरुक्षेत्र गई, तो मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि गौड़ीय वैष्णव जो है कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं, जहां पर राधा रानी क्या करती हैं, कृष्ण को वृंदावन लाने के लिए। तो वृंदावन का मतलब है कृष्ण को हृदय में बसाना, कृष्ण हृदय के राजा हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो भजन में है ना, उदिलो अरुण तो ना भजिलो हृदय राजे, हम अपने हृदय के राजा को न तो हृदय में बिठाए हैं और ना ही उनको क्या करते हैं, उनकी सेवा कर पा रहे हैं ठीक से कृष्ण की। तो जो ये दोनों को जो हृदय में बिठा सकता है और सेवा कर सकता है, तो वो भाव जो है राधा रानी ने कहां दिखाया, कुरुक्षेत्र में। सारे उनको पता चला कि कृष्ण कुरुक्षेत्र में हैं, तो भाग भाग करके यहां से बैलगाड़ियों में सब सामान रख रख करके अपना जो है कृष्ण को लाने के लिए, कृष्ण को लाना है, कृष्ण को लाना है। कहां लाना है? अपने हृदय रूपी वृंदावन में, और इस वृंदावन में, इस वृंदावन धाम वापस लाना है। तो विद्या जो है दो प्रकार की होती है, परा और अपरा। परा विद्या बताएंगे आप में से, परा का मतलब क्या हुआ? परा मतलब आध्यात्मिक हुआ, भौतिक हुआ? हाँ, इसमें कभी कभी ये परा अपरा में कंफ्यूज हो जाता है इंसान, सोचता है अपरा होगा शायद वहां का। परा जहां पराभव नहीं है, अपरा, अपरा कहते हैं जहां पर पौ वर्ग है, पौ फौ भौ भौ मौ, आपको पता ही है पौ से परिश्रम, हम जितना मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता, पौ फौ, फौ से फिर झाग, क्या होता है आदमी मूर्छित हो जाता है उस परिश्रम करते करते, बौ से बंधन, पौ फौ बौ, फिर भौ से भय, मौ से मृत्यु, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। और परा प्रकृति में जहां इसका अभाव है, ये है ही नहीं ये सब चीज, वहां मृत्यु होती ही नहीं। तो परा और अपरा, परा विद्या स्वरूपिणी विष्णु प्रिया जी का जो आविर्भाव है वो आज के दिन बसंत पंचमी के दिन वो प्रकट हुई। और यही जो है कौन है, जो भक्त लोग हैं आज के दिन इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि यही जो है कौन है, परा विद्या को देने वाली। और जड़ विद्या केवल मायार वैभव, जड़ विद्या कहते हैं, जड़ विद्या की मालकिन कौन है, दुर्गा जी, सरस्वती जी। तो आज के दिन लोग सरस्वती पूजा करते हैं क्योंकि वो जड़ विद्या के लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, इतिहास, तो वो सारे स्कूलों में, आज स्कूल छुट्टी नहीं होती, सारे बच्चों को बुला करके क्या करते हैं, सरस्वती जी की बहुत बड़ी फोटो रख के सब पूजा करते हैं। लेकिन हम भक्त लोग किनकी पूजा करते हैं, जो परा भक्ति देने वाली है, जो पराशक्ति है, परा से शक्ति है विविधये श्रूयते, तो वो है कौन, विष्णु प्रिया जी। तो भक्त लोग शुद्ध भक्तों, शुद्ध भक्ति को पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। आज के दिन हम लोग पूजा करते हैं विष्णु प्रिया जी की, और संसारिक लोग करते हैं सरस्वती जी की। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम सरस्वती जी का अपमान कर रहे हैं या सरस्वती जी को अपमान करेंगे, सरस्वती माता को भी, क्योंकि इस जगत में उनको जो है विद्या की देवी बनाया गया, तो उनको भी पूजते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए हम जो है श्रीमती विष्णु प्रिया जी का क्या करेंगे, ध्यान करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। और विष्णु प्रिया जी खुश होती हैं कैसे, जब हम गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हैं, तो गौरांग महाप्रभु का नाम लें, बोले गौर 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 गौरांग गौरांग नित्यानंद भजो गौरांगा कहो गौरांगा लहो गौरांगे रो नाम रे। बोलिए भजो गौरांगा कहो गौरांगा लहो गौरांगे रो नाम रे भजो गौरा जय जना गौरांगो भजे सेई तो आमार प्राण रे जय जना गौरांगो भजे सेई तो आमार प्राण रे सेई तो आमार प्राण रे भजो गौरांगा कहो गौरांगा लहो गौरांगे रो नाम रे। गौरांगो माता गौरांगो पिता गौरांगो धन और प्राण रे। गौरांगो धन और प्राण रे। गौरांगो माता गौरांगो पिता गौरांगो धन और प्राण रे। नाचीते नाचीते संकीर्तन करो गौरांगो भक्त संगे। हरि बोल, मजाक नहीं, इधर देखो। नाचीते नाचीते संकीर्तन करो गौरांगो भक्त संगे। जब गाते हैं तो ध्यान यहाँ होना चाहिए, तब ताल नहीं बिगड़ेगा। भजो गौरांगा कहो गौरांगा लहो गौरांगेरो नाम रे। इससे अच्छा वैसे गाओ, ज्यादा अच्छा है। ताल में होना चाहिए, ताल में, नहीं तो रस भंग हो जाता है फिर गाने का। संगीत अगर ताल में नहीं है तो रस भंग हो जाता है। तो विष्णुप्रिया जी जो हैं, गौर नारायण की शक्ति के रूप में विष्णुप्रिया जी का जो आविर्भाव है उसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर जो है चैतन्य चरितामृत में भी बता रहे हैं। तो बताया गया है जो भी विष्णुप्रिया जी और चैतन्य महाप्रभु की विवाह के लीला को सुनेगा, बहुत सुंदर विवाह लीला भी उनकी जो है बता रखी है, कैसे उनका विवाह हुआ, महाप्रभु कैसे विवाह के लिए निकल रहे हैं और कैसे बुद्धिमंत खान जी जो हैं उन्होंने सारे खर्चे की व्यवस्था करी और कैसे सची माता जो हैं काशी मिश्र जी को भेजी वहां पर, किनके घर, सनातन मिश्र जी के इधर, कि तुम जो हैं पंडित के रूप में जाओ और उनको बोलो कि तुम्हारी जो कन्या है वो मुझे अपने पुत्र के लिए पसंद आई है। तो भगवान जो है इस संसार में लौकिक विवाह के बारे में सुनने से बंधन उत्पन्न होता है या लौकिक विवाह में जाने से, तो आदमी के मन में जो है सांसारिक भोगों की बढ़ोतरी होती है। लेकिन भगवान और विष्णुप्रिया जी के बारे में, विवाह के बारे में सुनने से क्या होता है, हमें हमारा संसार बंधन जो है वो खत्म हो जाता है। तो काशीनाथ पंडित जो है विष्णुप्रिया जी के पिता सनातन मिश्र जी को कहते हैं कि आप तुम्हार कन्याएं योग्य सेवी दिव्य पति तहार उचित यही कन्या महासती। आपकी जो कन्या जो है वो क्या है, परम पवित्र है, सती है, पवित्रा है, और दिव्य पति कौन है, स्वयं कृष्ण जो है वो गौर के रूप में आए हैं, और देखा जाए तो यही जोड़ी है, इन दोनों के लिए और कोई जोड़ी है ही नहीं। तो इसलिए कृपा करके आप जो हैं, ये न कृष्ण रुक्मणी ते अन्योन्य उचित सेई मत विष्णु प्रिया निमाई पंडित। तो कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी के लिए उचित हैं, ठीक उसी प्रकार निमाई पंडित भी विष्णु प्रिया जी के लिए उचित हैं। तो कृपा करके आप जो है अपनी कन्या का हाथ जो है देने का कष्ट करें। तो प्रभु के विवाह का सारा खर्चा जो है बुद्धिमंत खान जी ने दिया और सब प्रकार से विवाह की तैयारियां जैसे वेस्ट बंगाल में होती हैं उस प्रकार से ही जो है पूरे के पूरे जो है महाप्रभु के विवाह का शुरू हुआ। तो शुभ दिन और लग्न में समारोह पूर्वक अधिवास उत्सव संपन्न हुआ एक दिन पहले से। तो गोधूली लग्न के समय महाप्रभु जी पालकी में बैठकर राज पंडित सनातन मिश्र के घर जाकर उपस्थित हुए। पालकी में बैठ रहे हैं महाप्रभु, और जैसे संसार में कभी कोई घोड़ी में बैठता है और कुछ लोग पालकी में ही जाते हैं, और कहीं कहीं पर पालकी में जो है जो कन्या है उसको ले जाने का विधान है तो महाप्रभु पालकी में। तो लोकाचार के अनुसार गौर विष्णु प्रिया का बिल्कुल वहां की रीति के हिसाब से विवाह संपन्न हुआ। और दूसरे दिन क्या हुआ, महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी के साथ पालकी में ही अपने घर वापस आए, क्योंकि आज शाम के समय में गोधूली के समय में जब गोधूली मतलब जब गाय घर आती हैं तो उस वक्त क्या होता है उनके पैरों से जो है धूली उड़ती है, इसलिए उसको गोधूली कहते हैं। समय होता है लगभग 5:30 से 6:30 के बीच में, तो सूर्य अस्त ही होने वाला होता है, उससे पहले जो है गायें भागते भागते घर आती हैं। तो उसी वक्त जो है गए थे चैतन्य महाप्रभु और अगले दिन जो है क्या किए, पालकी जो है वापस आई, विष्णु प्रिया जी को साथ में लाए। तो लक्ष्मी नारायण जी का विवाह लीला का श्रवण करने पर जीव को स्वाभाविक जगत की भोक्ता और भोग्य संबंधित अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती है। इस संसार में जो भी जितनी भी काम वासनाएं हैं और जिसके कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं जिस काम के कारण हम इस संसार में बार बार हमारा जन्म हो रहा है इसके कारण ही, तो वो जो हैं महाप्रभु और विष्णु प्रिया जी के चरित्र को सुनने से, उनकी विवाह लीला सुनने से इसमें क्या हो जाता है आपका, ये दूर हो जाता है, बोलते हैं केवल सुनने मात्र से। तो आगे बोलते हैं बुद्धिमंत खान को चैतन्य महाप्रभु बहुत जो है प्रेम करते थे, उन्होंने क्या किया, उनको आलिंगन किया और कृपा प्राप्त करके बुद्धिमंत खान जो है क्या हो गए, धन्य हो गए। और इस प्रकार से फिर आगे उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है चैतन्य भागवत में भी कि कैसे लग रहे थे चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया जी जब नवदीप के वासी उनको देख रहे थे, तो अलग अलग भक्त, तो वो जो है वर्णन किया है कि कोई कहता है केहो बोले यही हेन बुझी हर गौरी, केहो बोले हेन बुझी कमला श्री हरि। मतलब कोई कहता है कि ये शिव पार्वती जैसे लग रहे हैं, कोई कहता है कि दोनों लक्ष्मी नारायण हैं, कोई कहता है कि ये दोनों कामदेव और रति हैं, और कोई कहता है कि मेरी बुद्धि के अनुसार ये इंद्रदेव और सची हैं, ऐसे तुलना, इतने सुंदर लग रहे थे। कोई कहता है कि दोनों रामचंद्र और सीता हैं। तो इस प्रकार जितने भी पुण्यवान सुकृतिवान जीव थे वो जो हैं टकटकी लगा करके महाप्रभु को और विष्णु प्रिया जी को देख रहे थे, साक्षात लक्ष्मी नारायण को देख रहे थे, साक्षात भगवान को और लक्ष्मी जी का दर्शन कर रहे थे, और लक्ष्मी जी से सुंदर विश्व में कौन है। तो विष्णु प्रिया जी शैशव काल से ही पिता माता और विष्णु परायण थी, ये प्रतिदिन गंगा में 3 बार स्नान करती थी और गंगा स्नान करते 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 समय ही, क्योंकि सची माता भी वहां जाती थी, तभी जो है इनको इनका परिचय हुआ था और इन्होंने बहुत ही आदर देके उनको प्रणाम करती थी। तो उसी वक्त सची माता ने जो है मन में इच्छा कर ली थी कि मैं अपने पुत्र के लिए इनको पुत्र वधु के रूप में लाऊंगी। तो जब इनको पता चला कि 24 वर्ष की आयु में महाप्रभु क्या कर रहे हैं, संन्यास ग्रहण करेंगे, 48 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे महाप्रभु, तो 24 वर्ष कहां रहे हैं, 24 वर्ष पुरी में रहे, लेकिन उससे पहले 24 वर्ष कहां रहे, नवद्वीप में रहे, और भी पूरे नवद्वीप में उन्होंने भ्रमण किया और सभी भक्तों को कृतार्थ किया अपनी बाल्य लीला से और अपने संकीर्तन लीला से, और अष्ट प्रहर भाव दिखाए श्रीवास आंगन में और नाम संकीर्तन स्थापित किया। तो इस प्रकार से जब पता चला उनको कि गौरांग महाप्रभु जो हैं 24 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लेंगे, तो ये जो हैं इनके ऐसा इनका हृदय, ये न तो सस्ती थी न समर्थी थी, और यहां तक कि भोजन भी जो है ठीक से नहीं खाती थी और सदा आंसू बहाती रहती थी, और पूरा आंसू बहाते बहाते इनका जो सुंदर कमल जैसा मुख है वो लाल पड़ गया, एकदम काला काला पड़ने लग गया, क्योंकि पता चल जाए हमारे प्राण प्रिय जो हैं चले जाएंगे तो क्या स्थिति होगी भक्त की जो प्रेम करते हैं। ये वही समझ सकता है जो इस संसार में निद्रा देवी से उठ जाएगा। नींद मत लीजिए, सॉल के अंदर बड़ी अच्छी नींद आती है। तो ये वो व्यक्ति समझ सकता है जिसने इस संसार में, जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं और पता चल जाए कि वो हमको छोड़ के जा रहा है, या आज के बाद अब नहीं बात करेगा या नहीं मिलेगा या नहीं, तो जिसने कभी ऐसे प्रेम किया है संसार में, तो उसके ऊपर क्या बीतती है वो थोड़ा रियलाइज कर सकता है कि विष्णु प्रिया जी की क्या हालत हुई होगी। इस संसार का प्रेम तो उतना वो नहीं है, वहां तो भगवान के बिना जीवन है ही नहीं, और वो कहें कि मैं चले जाऊंगा तो स्थिति क्या होगी बताइए। तो विष्णु प्रिया जी जो है फिर वो केवल, और एक दिन क्या हुआ, रात को गौरांग महाप्रभु जी निकल गए उस घाट से, और उसका घाट का नाम क्या रख दिया, निदया घाट। आप नवदीप कभी जाएंगे तो निदया, वो अपनी दया छोड़ के, गौरांग महाप्रभु तो नमो महाबदन्य आए हैं, लेकिन निदया वो क्या करके अपनी दया को छोड़ करके नवदीप वासियों को पागल बना करके, और विशेषकर विष्णु प्रिया जी सची माता जो है जब, तो इनको तो इनके लिए तो साक्षात मतलब केवल शरीर को ढोएंगे ये, उसके बाद फिर ये समझ लो मृत्यु को प्राप्त हो चुके, इनका शरीर है ही नहीं, बस ऐसे ऐसे जिएंगे। तो ऐसे ही जो है विष्णु प्रिया जी क्या करती हैं, श्रीनिवास आचार्य जी ने विष्णु प्रिया देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये जो है कि किस प्रकार से विष्णु प्रिया जी विरह में रहती थी गौरांग महाप्रभु के, और किस प्रकार से वो दो जो है एक एक साइड में रखी रहती थी चावल की हांडी और दूसरी साइड में खाली, और क्या करती थी, एक दफे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक चावल का दाना जो है उसमें फिर वो डाल देती थी ऐसे करके। तो ऐसे ही तीन प्रहर, एक प्रहर में चार घंटे होते हैं, चार तीन बारह, तो तीन प्रहर में जितनी भी माला हो जाती थी, इसका मतलब सवेरे से शाम तक 12 घंटे, तो तब जो है ये उसी चावलों को बना करके और फिर जो है महाप्रभु को भोग लगा करके केवल उतना पान उतना ही पाती थी, बस हो गया। पाने का मन कहां करेगा, हम लोग के भीतर हम लोग कभी समझ नहीं सकते हैं कि बिना खाए कैसे रह सकते हैं करके, क्योंकि हम लोग तो सवेरे भी दोपहर को भी शाम को भी अगर थोड़ा रात को भी अगर यहां मिल जाता तो आदमी बोलता बहुत अच्छा जी, जितनी संख्या उस वक्त होगी उतनी संख्या ऐसे समय में नहीं होगी, है नहीं। तो कलयुग में भोजन में प्राण है, तो भोजन में लोग जो हैं भोजन में बड़ी रुचि होती है सबकी, कथा कीर्तन में बहुत कम। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है पूरा का पूरा उन्होंने क्रियाएं देखी, तो बोलते हैं मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊंगा ठीक से क्या किया। विष्णु प्रिया जी के नेत्रों ने नींद त्याग कर दी, भूमि पर पड़े पड़े ही कभी कभार नींद आ जाती, सोने के समान जो अंग थे वो मलिन हो गए हैं, कृष्ण चतुर्दशी के चांद के भांति शरीर था वो क्षीण हो गया, चावलों से हरिनाम की गिनती करती और फिर उन्हीं चावलों को रसोई करके महाप्रभु जी को भोग लगाती, उसमें से भी थोड़ा ही खा पाती, कोई नहीं जानता था कि वो अपने जीवन की रक्षा कैसे करती थी। तो इस प्रकार से विष्णु प्रिया जी ने फिर जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग कर दिया था तो उनको यज्ञ करना था, क्योंकि त्रेता युग में यज्ञ होते थे बड़े बड़े, तो बिना इस धर्म पत्नी के यज्ञ जो हैं, कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो पूर्ण नहीं माने जाते हैं, तो भगवान ने सोने की सीता बनाई थी, उनको इस प्रकार से अपने बगल में रखा था, आदर दिया था। तो यहां पर जो है इन्होंने भी क्या किया था, गौरांग महाप्रभु का विग्रह, गौरांग महाप्रभु को जो है बनाया इन्होंने, जिनका हम क्या करते हैं दर्शन करते हैं, कौन सी जगह, नवद्वीप में ही कोलद्वीप के पास में है, कोलद्वीप बोलते हैं उसको उस साइड, तो वहां पर जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आज भी महाप्रभु का जिनका वो सेवा करती थी और उनकी चरण पादुका भी है महाप्रभु जो उनका साक्षात विग्रह, उस साइड नित्यानंद प्रभु का है, इस साइड गौरांग महाप्रभु का। तो भक्त लोग दर्शन करके चरण पादुका जो है सर पे रखते हैं, तो वहीं पर जो है ये नित्य गाती थी, जो है गौरांग महाप्रभु का नाम गाती थी और हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे। तो ऐसे करके विष्णुप्रिया जी जो है, ऐसे विष्णुप्रिया माता का आज क्या हुआ है आविर्भाव, आज के दिन वो बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आध्यात्मिक शक्ति दें, भक्ति दें और गौरांग महाप्रभु का प्रेम दें और हमारी भगवान के नाम में रुचि होए, हमें कथा में रुचि होए और हमें भक्ति में रुचि होए, ये हम जो है प्रार्थना उनसे करते हैं। तो बहुत सारे आचार्यों का आज जो है वो है, तो इसलिए समय बहुत कम है, तो मैं थोड़ा सा रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में मैं सोचता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए पढ़ देता हूँ, सीधा सीधा सुन लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वैष्णव कुल में उत्पन्न रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक धनी और संपन्न जमींदार के एकमात्र पुत्र थे। क्या था उनके पिताजी का नाम? गोवर्धन मजमूदार। उनके बड़े भाई थे हिरण्य मजमूदार। तो बाल्यावस्था में उन्हें हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हुआ। हरिदास ठाकुर जब उस जगह को छोड़ के आ गए थे जहां पर उनकी परीक्षा ली गई थी, उनको भक्त बना करके वो जब आए थे, तो उनको पता चला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कि हरिदास ठाकुर वहां आए हैं, तो हरिदास ठाकुर का संग करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए वो जो है आए। और 15 वर्ष की अवस्था में जो है उनको हरिदास ठाकुर का आशीर्वाद और संग प्राप्त हुआ। और हरिदास ठाकुर का संग और आशीर्वाद मिलने का मतलब उनको कृष्ण के प्रति जो है रुचि और कृष्ण के प्रति पागलपन जो है वो शुरू हो गया था, आकर्षण शुरू हो गया था। क्योंकि ऐसे भक्तों का, ऐसे भक्तों के मुख से हरि कथा सुनना और उनका दर्शन करने से जो है क्या होता है, व्यक्ति पवित्र हो जाता है और तुरंत उसके अंदर निष्ठा वाली भक्ति जो है प्रकट हो जाती है, रुचि होने लगती है। तो चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई और कुछ वर्षों के बाद नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने एक सुंदर पत्नी और एक वैभवशाली परिवार का त्याग कर दिया। वे गौर राय एवं अपने शिक्षा गुरु स्वरूप दामोदर गोस्वामी की अंतरंग सेवा करने के निमित्त जगन्नाथपुरी भाग गए और 16 वर्षों तक वहां उनकी सेवा की। गौरांग महाप्रभु ने अपने निजी गोवर्धन शिला और गुंजा माला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को प्रदान की थी। ये तो शॉर्ट में है वो कैसे बड़े हुए, कैसे उनको आशीर्वाद मिला, फिर कैसे उनके माता पिता कितने अमीर थे और फिर कैसे वो जो हमेशा भाग जाया करते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, उनका संग करने के लिए। तो उनका जो है विवाह करा दिया गया कि यही एक रीति है जिससे कि क्या हो जाएगा, रुक सकता है। और विवाह भी कैसे कराया, परम सुंदरी जो है स्वर्ग से भी, स्वर्ग की मेनका और उर्वशी से भी ज्यादा सुंदरी उनकी पत्नी थी और बहुत धनी, इनके पास बहुत मतलब सालों में इतनी आय थी उस वक्त के समय में, खरबों रुपए की आय थी एक साल में कम से कम। तो इतना बड़ा जो है ऐश्वर्य को उन्होंने क्या किया, त्याग दिया, और इतनी सुंदर पत्नी को त्याग दिया। कैसे त्याग पाए, हरिदास ठाकुर की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से। जब भगवान में आकर्षण हो जाता है तो इस संसार की कोई भी वस्तु फिर कभी भी आकर्षित नहीं कर सकती है। चाहे सारी दुनिया का राजपाट दे दिया जाए, सारी दुनिया के आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, इंद्र बना दिया जाए, आपको जीबीसी बना दिया जाए, कुछ भी क्यों ना किया जाए, आपको फिर उन सब चीजों से क्या होता है, बिल्कुल रुचि खत्म हो जाती है। तो ये कैसे हो पाता है, जब ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है। तो हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद से जो है रघुनाथ दास गोस्वामी जो है इतने बड़े भक्त बन पाए और उनके वैराग्य, उन्होंने सारा सुंदर सुंदर वस्त्र सब जो है त्याग दिए और वो जो है जगन्नाथपुरी में जाके भिक्षा मांगने लगे। जब भिक्षा मांगते थे तो क्या दिखता था उनको, कि कोई नहीं देता था, तो उसमें कभी सोचते थे कि उसके प्रति कोई देता था तो अच्छा भावना होता था, कोई नहीं देता था तो उसके लिए लगता था नहीं दे रहा है, या कल फिर मिलेगा ऐसी आसक्ति होती है। तो इस कारण से उन्होंने भीख मांगना भी छोड़ दिया। फिर जो है वो जगन्नाथ जी के प्रसाद पर निर्भर रहने लगे कि जैसे तैसे उनका प्रसाद मिल जाएगा। वो भी नहीं मिला तो फिर क्या हुआ, उनने जो नाला है जगन्नाथ जी का प्रसाद जहां से जब पा लेते हैं, जो जहां प्रसाद का मार्केट है वहां से जब धुलाई होती, जो वो सारा का सारा निर्माल्य और सारा प्रसाद जो है जिस नाले से बहके जाता है उसके पास में बैठ करके उन रघुनाथ दास को स्वामी जी जो है उस चावल को इकट्ठा करके उसको सुखा करके फिर पाने लगते थे। तो एक दफे पा रहे थे तो गौरांग महाप्रभु आए, बोले रघुनाथ इतना मीठा इतना सुंदर प्रसाद अकेले खाते हो, तुम अकेले के, तुमने मेरे से नहीं पूछा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचते हैं नाली में बह करके जो है जा रहा था और मैं इसको कैसे जो है महाप्रभु को दे सकता हूं वापस। तो लेकिन महाप्रभु छीन करके उनके हाथ से जो है लिए और महाप्रभु जो है लेकर के बोलते हैं कितना उत्तम प्रसाद है। और ऐसा नहीं कि केवल बनावटी बोल रहे थे, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में ये जो है आपस में जो है होड़ लगती है, प्रेम की होड़, और एक दूसरे से छीना झपटी भी होती थी, है कि नहीं। तो ऐसे करके भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे जब बच्चा 10 साल तक होता है ना, उसको माँ से कितना प्रेम होता है 1 से लेके 9 साल तक, कि वो माँ को छोड़ना नहीं चाहता है हमेशा माँ का। कितने बच्चे आपने देखा होगा पल्लू पकड़ के चलते हैं, ऐसे करके वो पकड़े रहेंगे, वो थोड़ी देर छोड़ दो रोने लग जाएंगे और फिर उनको खिलाओ, बहुत अटैच्ड। तो ऐसे ही जो है भक्त भगवान पर निर्भर होता है, और जैसे माँ अपने बच्चे के लिए निर्भर होती है ऐसे भगवान अपने भक्त के लिए निर्भर होते हैं। तो ये जो है बड़ा दिव्य प्रसंग है। तो चैतन्य महाप्रभु के इस जगत से प्रयाण करने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए जीवित रहना दुष्कर हो गया। वे गोवर्धन पर्वत से कूद करके अपना शरीर त्यागना चाहते थे, लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी ने उनको समझाया कि बातुल मत बनो, ऐसे भगवान खुश नहीं होंगे, ऐसे महाप्रभु खुश नहीं होंगे, क्या करूं फिर। तो बोले जीवित रहकर ब्रजवासी वैष्णव गण को क्या करो, महाप्रभु की पूरी लीलाओं को सुनाओ। तो फिर वो प्रतिदिन 3 घंटे तक राधा कुंड में क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते थे, राधा कुंड में चैतन्य महाप्रभु के बारे में, समझ रहे। तो क्यों, चैतन्य महाप्रभु जो हैं स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जो सुनता है वो रासलीला में ही भाग लेता है। तार होय ब्रजभूमि वास, उसी का ब्रजभूमि वास होता है जिसको गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में भी प्रेम होता है। तो इस प्रकार से 3-3 घंटे कथा करते थे। उन्होंने 40 वर्षों तक राधा कुंड में जो है राधा कुंड के तट पर राधा कृष्ण का भजन किया और शुद्ध भक्ति भाव से परिपूर्ण एक कठोर तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रदर्शित किया कि राधा कुंड की नित्य निकुंज लीलाओं में राधा गिरधारी की नित्य प्रेममय सेवा प्राप्त करने हेतु किस कोटि के वैराग्य की आवश्यकता है। उनका आदर्श उदाहरण समस्त गौड़ीय वैष्णव गण को राधा कृष्ण के प्रति अनन्य शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए उत्साहित करता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है राधा कुंड में जो है 64 माला करते थे, नित्य उनका ये दैनिक नियम था, और मतलब 1,00,000 पवित्र नाम जप करना और सिद्ध देह में मानसी सेवा, क्योंकि जब सिद्ध देह में ये रति मंजरी है, रस मंजरी रति मंजरी, तो सिद्ध देह में जो है क्या कर रहे हैं, वो सिद्ध देह में एक देह उधर है, एक सिद्ध देह में जो है मानसी सेवा वो जो है भगवान का सेवा करते थे। गोवर्धन शिला की पूजा अर्चना करना और राधा कुंड में 3 बार स्नान करना और 1,000 दफे कृष्ण को प्रणाम करते थे और 2,000 बार वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते थे प्रतिदिन, और आलिंगन करना, वैष्णवों को आलिंगन भी करते थे, वैष्णवों को गले भी लगते थे, गले कौन लगता है जिसके भीतर प्रेम होए, कम से कम है कि नहीं? तो जब प्रेम ही नहीं होगा तो कहां से गले लगेंगे, है नहीं? गले लगने का मन भी किसी से तभी करता है जब भीतर प्रेम होए। कभी कभी भक्त लोग, कोई भी भक्त चैंटिंग कर रहा होता है, नाच रहा होता है, वो जो ही रुकता है तो गले लगा लेते हैं, देख करके प्रेम उमड़ता है भक्तों में। तो बोलते हैं 90 मिनट विश्राम करना और कभी कभी तो तनिक भी विश्राम न करना, किंतु ध्यान रहे कि जब प्रभु का कोई नित्य पार्षद बाहरी रूप से विश्राम करता है तब भी वह मानसिक रूप से सेवा में संलग्न रहता है। वे प्रतिदिन केवल एक दोना यानी कि 100 ग्राम छांस, एक दोना छांस पीते थे। आज भी जब आप जाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि में राधा कुंड में, तो उस जगह पर क्या होता है, जब परिक्रमा करते हैं तो वहां का रज और सामने छांस रखा होता है महाप्रसाद के रूप में, तो हम लोग भी लेते हैं उसको, तो वही राधा कुंड का जल उसमें मिला करके छांस लेते थे। तो जीवन पर्यंत उन्होंने इंद्रिय तृप्ति हेतु कुछ नहीं खाया, जीवन निर्वाह हेतु वे नाम मात्र को ही भोजन ग्रहण करते थे। लोगों के कहने अनुसार चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के उपरांत रघुनाथ दास केवल फल और दूध ही ग्रहण करते थे। पहले तो भोजन भी लेते थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु गए फल और दूध पे आ गए वो, और जब सनातन गोस्वामी जी चले गए तो एक या दो दिन में एक बार उन्होंने दोना छांस ग्रहण करके जीवित रहते थे। और जब रूप गोस्वामी जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सारा अन्न और जल सब क्या कर दिया, त्याग दिया, वो भी त्याग दिया। कितना प्रेम है, अन्न जल से प्रेम नहीं है, वो तो महाप्रसाद के रूप में सामने आता है तो भक्त लेता है, क्योंकि महाप्रसाद का भी अपमान नहीं करना होता है, चाहे आप थोड़ा लें तो महाप्रसाद को लेना होता है। तो इस प्रकार से वे भगवान एवं उनके प्रेमी सेवकों की विरह ज्वाला में क्या हो रहे थे, दहक रहे थे, मतलब उनको कहीं भी उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि रूप गोस्वामी चले गए हैं और सनातन गोस्वामी चले गए हैं, अब मैं क्या करूंगा यहां रह करके। तो भक्त जो है एक दूसरे भक्त के लिए विरह उत्पन्न होना, ये भी जो है भक्ति की क्या है, बहुत बड़ी भक्ति की पराकाष्ठा है। ऐसा होना जो है ये बहुत उत्तम बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आसक्ति रहेगी, हम लोग बिना आसक्ति के नहीं रह सकते हैं। तो भक्तों में आसक्ति होगी, भक्तों के कथा कीर्तन में आसक्ति होगी, ये बहुत उत्तम बात है, क्योंकि यहां आसक्ति नहीं होगी तो कहां आसक्ति होगी, फिर संसार में आसक्ति होगी, कोई ना कोई तो विषय चाहिए हमें, क्योंकि बिना उसके रह नहीं सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी 3 ग्रंथों की रचना की, रत्नावली और मनः शिक्षा और विलाप कुसुमांजलि। तो इसमें बहुत मन को शिक्षा दे रखी है मनः शिक्षा में, और स्तवली और विलाप कुसुमांजलि, कैसे जो है विलाप करना चाहिए, लव ऑफ सेपरेशन मतलब विरह, भगवान का कैसे विरह क्या होता है, वो जो है विप्रलंब भाव में, वो जो है रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जो है सिखाया है। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की परम श्रेष्ठता को स्थापित किया, और अंतरंग प्रार्थनाओं का एक संग्रह विलाप कुसुमांजलि में वे कहते हैं श्री राधा की सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है, अपनी प्राणेश्वरी राधा रानी के वियोग में निराशा और अत्यंत आतुरता का अनुभव करते हुए वे उद्विग्न होकर राधा रानी की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा जीवन व्यर्थ है, यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त न हुई तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मेरे लिए राधा कुंड और वृंदावन वास निरर्थक है। वृंदावन क्या, आपके बिना तो स्वयं श्री कृष्ण भी मेरे लिए अर्थहीन है। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी के लिए बोल रहे हैं सब। हे श्रीमती राधा रानी, आप ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हैं, कृपया मेरे प्रति करुणाशील हों, प्रचुर दुखानल में दग्ध चित्त होकर अतिशय रोदन के साथ में आपके चरण कमलों में अपने हृदय को धारण करता हूं और आपकी प्रेम भक्ति की भिक्षा मांगता हूं। कदाचित यह विलाप कुसुमांजलि आपको थोड़ा सा तुष्ट कर पाए, ये जो मेरा विलाप है थोड़ा सा ही राधा रानी आपको तुष्ट कर पा। राधा रानी तो सबसे जल्दी अगर कोई खुश होता है तो वह है राधा रानी, करुणा कुरुमयी करुणा भरी थी। और इतना विलाप कोई करेगा तो राधा रानी उसके प्रति क्या होगी बताइए, है तो राधा रानी तो पागल हो जाएंगी। तो श्री वृंदावन धाम में श्री रघुनाथ दास रति मंजरी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा में संलग्न है, उनकी समाधि राधा कुंड और 64 समाधि में है। तो आगे है श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी। तो विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जो हैं हरि बल्लभ दास यानी कि नरोत्तम दास ठाकुर जी की शिष्य परंपरा में आते हैं। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने श्री राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा ग्रहण की थी और वे विवाहित भी थे और उन्होंने जो है अपनी पत्नी को श्रीमद् भागवत सुना करके अपनी पत्नी का मन जो है क्या किया, भगवान में लगा दिया पूर्ण रूप से। और फिर उनका त्याग करके जो है वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भजन जो है करने लग गए राधा कुंड के तट पर जाकर के। उनकी शुद्ध भक्ति विद्वता तथा राधा गोकुलानंद की अंतरंग विलास लीलाओं की जो अनुभूति थी उनके द्वारा ही स्थापित विग्रह है राधा गोकुलानंद। जब आप जाते हैं नीचे विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर, वहीं उनकी समाधि भी विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी की, तो हम लोगों को दर्शन करने चाहिए, जाना चाहिए और कृपा मांगना चाहिए। तो उनको वैष्णव मुकुटमणि कहा जाता है। गौड़ी अधिकारी जन का कहना है कि रूप गोस्वामी जी वाग देवा अवतार हैं, अर्थात वाणी रूप देवता अवतार हैं। तो गौड़ी आचार्य जो हैं विशेषकर उनके प्रत्यक्ष शिष्यों का मानना है कि विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर रूप गोस्वामी के अवतार हैं। तो परम सत्य की जो अनुभूतियां हैं, जो उनका अनुभव है, सारे गौड़ी वैष्णव आचार्य में केवल विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ही श्री रूप गोस्वामी जी के सदृश हैं। तो विश्वनाथ का अर्थ ही है क्या, जो विश्वनाथ का अर्थ वह है, वह विश्वनाथ श्री कृष्ण जो विश्व के क्या हैं, नाथ हैं, स्वामी हैं। और भक्ति रूप मणि को जो प्रकाशित करता है, चक्रवर्ती का अर्थ है कि जो श्री कृष्ण भक्त चक्र मंडल में अवस्थित करता है, जो सभी को भक्त के चक्र में, ये भक्त का चक्र है, एक चक्र लगाओ बोलते ना, एक चक्कर लगाओ, तो जितने हम सब भक्त बैठते हैं ये चक्र में बांधा किसने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। तो चक्रवर्ती का मतलब जो सब जन को शुद्ध श्री कृष्ण भक्त चक्र मंडल में अवस्थित करता है। जब आप भक्ति वृक्ष प्रोग्राम करते हैं तो उसमें भी मंडल आते हैं बहुत सारे, ये मंडल वो मंडल, तो ये मंडल का मतलब ही है सबको इकट्ठा करना, सभी भक्तों को इकट्ठा करके महामिलन करना। और महामिलन में क्या है, भगवान का नाचो गाओ करो भक्त संगे संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन, ये है बस ये कार्य है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि गौड़ीय वैष्णववाद के ऐतिहासिक विकास के मध्यकाल 1600-1700 में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रमुख संरक्षक थे और वो जो हैं प्रतिपालक थे और आचार्य थे। गौड़ीय वैष्णववाद का विकास चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ हुआ था और भक्ति विनोद ठाकुर ने इसे पुनः जागृत किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका विस्तार किया। और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने क्या किया, विश्व भर में इसका प्रसार प्रसार किया। तो वृंदावन में अपने प्रवास के समय विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने राधा गोकुलानंद और गिरिराज जी के अर्चा विग्रहों का पूजन किया। उनकी गोवर्धन शिला सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूजी गई और उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर मुकुंद दास, श्रीमती कृष्ण प्रिया ठाकुरानी और उसके बाद विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी ने उसकी अर्चना की। तो यह गिरिराज अभी जो है गोवर्धन विग्रह वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है, वही गिरिराज जी जिसकी विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर सेवा करते थे। सोचिए तो जो भक्त लोग उसको स्पर्श भी करते तो गिरिराज ही जो है अपने आप में परम पावन करने वाले हैं। कुछ आचार्य दावा करते हैं कि यह गोवर्धन शिला इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर के निकट रमन रेती में भागवत निवास में है, कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि वो यहां पर है। तो जहां पर भी है तो हमें दर्शन करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने विश्वनाथ को स्वप्न में आदेश दिया कि तुम सभी गोस्वामी ग्रंथों की क्या करो, टीका करो। तो बड़ी सारी टीकाएं उन्होंने जो है की हैं, भागवत के ऊपर टीका है और भगवद गीता के ऊपर टीका है। इन्हीं के जो शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण जी, एक दफे जयपुर के राजा को, वहां के जो निम्बार्क संप्रदाय वाले हैं वो जो है बोलते थे कि क्योंकि उस वक्त जो है गौड़ीय सिद्धांत कि उनको पता नहीं था, ये पता था कि चार संप्रदाय हैं ब्रह्म संप्रदाय, लेकिन गौड़ीय वैष्णव का जो सिद्धांत क्या है, तो ये जो राजा थे ये गौड़ीय वैष्णव थे। तो इन्होंने बोला कि तुम जो है इस संप्रदाय में आ जाओ, हमारे वाले संप्रदाय में आ जाओ, उनको फोर्स करने लगे। तो राजा ने जो है रातों रात जो है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तब बहुत वृद्ध हो चुके थे, उनको संदेश भिजवाया और उन्हें बोला कि आप जयपुर आ जाइए और थोड़ा स्थापित कीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं अपराध कर रहे हैं। तब जो हैं उस वक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं काफी वृद्ध थे, तो उन्होंने अपने जो छात्र हैं स्टूडेंट शिष्य हैं उनका नाम है बलदेव विद्याभूषण, तो उनको जो है वहां भेजे हूं। और तब बलदेव विद्याभूषण जी ने 500 श्लोकों में जो है सूत्रों में शुद्ध भक्ति को और रस भक्ति को स्थापित किया और बहुत सुंदर मर्म स्पर्शी उन्होंने उसका वर्णन भी किया। तो ये सुन करके जो है वहां के सब लोग प्रभावित हो गए और तब उनको पता चला कि नहीं, गौड़ीय सिद्धांत जो है सूत्र भी जो है कितना प्रमुख है। तब फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो समझ गए कि हम लोग गलत थे करके। तो इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हैं कि एक दफे वो जहां पर भी बताया गया है, जहां पर भी भागवत लिखते थे या भागवत बोलते थे, एक दफे ऊपर से मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन जहां पर ये भागवत कह रहे थे न तो भागवत की पुस्तक में एक बूंद पानी गिरा और न उस स्थान में एक बूंद पानी गिरा, उतनी ही जगह में, बाकी दूसरी साइड पानी एकदम बरस रहा है पूर्ण रूप से ऐसे करके। तो ये अद्भुत शक्तियां जो हैं आ जाती हैं, लेकिन वैष्णव जो हैं इसको कभी प्रकाश नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एकाद घटना प्रकाश करके, ताकि हम लोग ये ना सोचें कि वो कुछ उनके प्रति हमारे को श्रद्धा हो जाए, क्योंकि हम लोगों को अभी वैष्णवों के प्रति श्रद्धा है ही नहीं। तो ऐसे वैष्णवों का चरित्र सुन करके, उनकी ऐसी ऐसी महानता सुन करके, फिर जो है धीरे धीरे उनमें क्या होता है, विश्वास आता है। प्रसाद शुरू हो गया है। तो रघुनंदन ठाकुर जी भी, रघुनंदन ठाकुर जी मुकुंद दास जी के बेटे थे और आज भी जो है श्रीखंड में उनका लड्डू वाला भोग, क्योंकि सबको पता ही है कि कैसे उनके पिता मुकुंददास जी को कहीं जाना था, बोले कि भोग लगा देना। तो जब भोग लगाया उन्होंने तो प्रभु ने पाया नहीं, तो बोले वो रोने लगे कि प्रभु आप पाओ, क्योंकि सरल मन में सरलता है, जो बालक होता है ना उसके सरल बुद्धि होती है। पिताजी बोल के गए थे कि खिलाना, इनने खाया नहीं है। तो भगवान ने, जब वो रोने लगे तो भगवान ने भी बोला ठीक है, भगवान पूरा चट कर गए, पूरा पूरा खा गए, छोड़ा ही नहीं। तो इस प्रकार से अब आए मुकुंद घर आए और उनने बोला कि भले नैवेद्य दो मेरे को, तो उनने बोला वो सब खा गए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जो है अगले दिन उनको बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं, तुम भोग लगाओ। तो तब वो भोग लगाने लगे, तो भगवान ने इस बार जो है क्या किया कि मुकुंद को कहीं अविश्वास नहीं हुए, तो आधा जो है उन्हें लड्डू भोग लगाया था, आधा लड्डू खाया और आधा जो है रखा हुआ था, और ये दूर से छिपके देख रहे थे। तब इनको समझ में आ गया कि जो है भगवान जो है कितने भक्त वत्सल हैं और मेरा पुत्र को जो है भगवान उसकी सरलता से कितनी जल्दी प्रकट हो गए। तो महाप्रभु जा रहे थे, महाप्रभु बोलते हैं कि अच्छा मुकुंद ये बताओ कि तुम्हारा जो पुत्र है ना रघुनंदन, कि वो तुम्हारा पुत्र है या पिता है। तो वो बोलते हैं वैसे तो मेरा पुत्र है वो, लेकिन अभी मैं ही उसका पुत्र हूं, क्योंकि जो भगवत भक्ति में जो भगवत भक्ति में प्रवीण होता है उसकी वजह से मुझे भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए वही मेरा पिता है। सही महाशय, वही महान आत्मा है। महान कौन है जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है, है नहीं। और गौड़ीय वैष्णव तो ऐसे वैष्णव हैं, ऐसे भक्त हैं जिनको देखने मात्र से, जिनका स्पर्श मात्र से भी केवल हरिनाम मिलता है और भगवान कौन है ये गुत्थी सुलझ जाती है, गीता भागवत सब। तो इसीलिए जितने भी इस्कॉन में और विशेषकर इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं, उन सब से जो भी मिलेगा तो उसका बताया गया है वहीं से उसका फिर जीवन जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है संसार में, दूसरे जन्म कम हो जाना शुरू हो जाते हैं। मिलते ही किसी भी से भी, वो चाहे नया भक्त क्यों ना हो, वो नया भक्त भी जो है बहुत पुण्यवान, इतना बड़ा पुण्यवान, उसके सारे पुण्य उदय हुए तभी तो वो सब कुछ छोड़ करके क्या हुआ, फुल टाइम भक्त बना। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में सौभाग्य है। तो इस प्रकार से रघुनंद आज भी वहां पर जो है लोग जो है ऐसे गोपीनाथ जी के जो है दर्शन करते हैं, जो आधा लड्डू लिए हुए अभी भी खड़े हैं अपने भक्त का वो करने के लिए। तो मुकुंद जी को बहुत वो था, मतलब कि अगर मेरा पुत्र पहले चला गया तो मेरा कौन वो करेगा। तो भगवान ने उनको एश्योरेंस दिया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। और जिस दिन मुकुंद जी गए उस दिन क्या किया, गोपीनाथ जी ने क्या लगाए ड्रेस, सफेद कपड़े पहने उनके लिए। और आज भी बता रखा है जब वो फेस्टिवल आता है तो उस दिन उनको सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं गोपीनाथ जी को, और गोपीनाथ अपने भक्त के लिए श्वेत वस्त्र जो है पहनते हैं। तो इस प्रकार से हम रघुनंदन आचार्य जी से प्रार्थना कर सकते हैं, मुकुंद जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी ऐसी भक्ति प्रदान करें, हम भी ऐसे सरल बन पाए, है नहीं। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें सरल भक्त बनना है, है नहीं। क्योंकि सरल भक्त बनने से ही भगवान प्राप्त होते हैं। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भक्त को शीघ्र प्रभु मिल जाए। जो भोले भाले ढंग, केवल यही प्रोसेस है और माथापच्ची नहीं करनी है, सिंपल यही प्रोसेस है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और कौन बच गए, पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि तो इतने बड़े भक्त हैं तो उनके उनका नाम लेने से महाप्रभु बोलते हैं कि पूरा जगत पावन हो सकता है, पूरा जगत पावन। बोलिए पुंडरीक विद्यानिधि की। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी इतने ऐश्वर्य में रहते थे, एक दफे उनको लेके गए गदाधर पंडित को दिखाने के लिए उनको। तो गदाधर पंडित ने क्या देखा कि वो जो है पीकदान रख रखा है, पान खा रहे हैं, सुंदर रेशमी वस्त्र पहन रखे हैं, तकिया ऐसे ले रखा है और उसमें भी कालीन बिछा हुआ है, तो और भी बहुत सारा ऐश्वर्य था वहां पर, और दो दो लोग पंखा झल रहे थे उनको ऐसे करके। तो उनके मन में आ गया कि ये कोई वैष्णव है कि राजकुमार है, ये वैष्णव ऐसा होता है। तो मन में वो आ गया, क्या बोलते हैं, संदेह हो गया। तो तब उनको समझाया कि नहीं नहीं, इनकी ऐसी दशा पर, ये बाह्य दशा पर इनके मत जाना। तो तभी अचानक जो है श्लोक का उच्चारण किया उनके सामने, कौन से श्लोक का, अहो अहो बकियतम स्तनकाल कूटम, जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे भगवान जो है पूतना जो है स्तनों में जहर लगा के आई थी भगवान को मारने, लेकिन भगवान उसको अपने गोलोक धाम में गोलोक धाम दिए, पूरा का पूरा धाम दे दिए और मां का स्थान दिए। कितने ये श्लोक, भगवान कितने दयालु हैं, ये सुनते ही जो है वो गिर पड़े और बड़े तेजी से पछाड़ खा करके, बता रखा 6 घंटे तक बेहोश रहे वो, और सारा चीज तोड़ दिया उनने, जो भी वहां पर सब पिए था, पीक दान था, वो था सब सारा तोड़ ताड़ करके। तब पता चला कि उनका कितने बड़े भक्त हैं ये, कि एक केवल भगवान की दया का स्मरण होने मात्र से 6 घंटे तक बेहोश हो गए इतना, और आनंद में बेहोश हुए वो, पूर्ण रूप से मूर्छित पड़ गए एकदम। तो इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि जो है बहुत बड़े, अगर इनके चरित्र को, अगर केवल एक व्यक्ति के चरित्र को अगर पढ़ा जाए और बढ़िया से उसको व्यक्त किया जाए तो पूरा कम से कम चार पांच घंटे में एक का चरित्र जाएगा, तो एक घंटे में इतनों के चरित्र कैसे जा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा एक एक छोटा सा, तो उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार का भावना और ऐसी भक्ति हमें भी प्रदान होए और हम आप सब वैष्णवों का चरित्र सुनते रहें, ठीक है। तो इतना कह के मैं वाणी को विराम देता हूं। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, एक मिनट, कुछ प्रश्न है तो प्रश्न कर सकता है। हरे कृष्ण।